ओम शांति। हमारी स्नेह भाई कृति बहन ने बहुत कुछ कह दिया। युवा प्रभाग से हम सब साथ साथ कार्य करते रहे तो कुछ ज्यादा ही जानकारियां मिल गई हैं उन्हें, ऐसा कुछ खास नहीं, किंतु सबसे बड़ी खास बात जो मुझे कभी विस्मृत नहीं होती और बिना कहे भी रह नहीं पाते हैं, वो है बाबा के महावाक्यों में एक पंक्ति, और वो पंक्ति है बच्चे त्रिवेणी रोज स्नान करो। आप सब सोचेंगे कि ये भक्ति का फल तो ज्ञान मिल गया, अभी बाबा कह रहा है त्रिवेणी स्नान करो, ये क्या है? तो वो गंगा जमुना और सरस्वती वाली त्रिवेणी नहीं, प्रयाग में जो प्रवाहित हो रही हैं, बाबा ने उनकी बात नहीं की, बाबा ने एक अलग ढंग की त्रिवेणी बताई। और वो त्रिवेणी बाबा ने बताई, सुबह सुबह उठ के वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा और वाह रे मैं। जब सुबह उठते हो तो उठने के बाद इन तीन महावाक्यों में जरूर एक बार डुबकी लगाओ। उठते ही वाह रे बाबा, कितना न थैंक्स है आपको जो आपकी नजर मुझ पे पड़ी और आपने मुझे चुना। वाह रे ड्रामा, क्या पार्ट है, पड़ोसी के घर में भी तो पढ़ सकती थी। ये ज्ञान सागर की बूंद जो सीपी में गिर के मोती बने, कहीं भी पड़ती और कहीं भी मोती बनता है। वाह रे ड्रामा और वाह रे मैं, अपने आप को भाग्यशाली समझो ना। जितने आप सब बैठे हुए हो, आप भी बहुत 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 पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अपने आप को महसूस करते हो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं? मैं उसे सिद्ध भी कर दूं कि आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा ने आपको चुना, एक मिरेकल आपकी जिंदगी में वो हुआ था जब आप बाबा के बने। दूसरा मिरेकल आपकी योग्यताओं से, बाबा ने आपको हथेलियों में रखा, आपको ऑफर दिया। अभी हमारी आदरणीय गीता बहन कह रही थी कि कितने साल बाद भाई बहन यहां आए भट्टी करने, तो ऑफर तो बहुतों को मिला होगा। आज मैंने यहां आने से पहले पूछा कि भई ये ग्रुप कहाँ कहाँ का है, तो मालूम पड़ा कि कुछ पटना की पवित्र भूमि से पधारे, बिहार की भूमि से, बहुत पवित्र भूमि है, और कुछ गंगा सागर के तट से पधारे हैं, कलकत्ते से पधारे हैं, और भी कई स्थानों के लोग हैं। तो ऑफर तो बहुतों को मिला होगा इस भट्टी का, लेकिन उस ऑफर को स्वीकार करके, बाबा के ही महावाक्य हैं, सौभाग्यशाली वो है जिसे ऑफर मिले। और पद्मा पद्म भाग्यशाली कौन, जो उस ऑफर को, उस ऑफरिंग को स्वीकार करके प्रैक्टिकल में यहां पहुंच जाए। तो एक बार फिर अपने लिए ताली बजाओ, पद्मा पद्म भाग्यशाली। मुझे जब आज का विषय दिया गया तो मुझे भी बेहद खुशी हुई, और मैंने जैसे कहा कि बाबा त्रिवेणी को याद करता है तो खुशी होती है। और दूसरी प्रसन्नता का आधार कि ये प्रयाग की भूमि हमारी परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, इस यज्ञ के फाउंडेशन स्टोन, आदरणीय दादियों की प्रथम कर्म भूमि है। गंगा के तट पे उन्होंने बालू में, रेत में बैठ के चित्र बिछा के सेवा की। जो अक्सर करके पुराने भाई बहन अगर होंगे उन्होंने सुना होगा कि दादी सुनाया करती थी कि कैसे एक रुपए में 7 लोग भोजन कर लिया करते थे। आज भी वो धर्मशाला वहां है जहां हमारे ये आदि रतन रहे और जहां उन्होंने सेवाएं दी। मुझे कुछ ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ गया। अनायास कुछ बनवाने गई थी, शिव बाबा का ब्लॉक बनवाने गई थी। पहले प्रिंटिंग में ब्लॉक यूज होते थे, तो इलाहाबाद की धरणी में जब मैं ब्लॉक बनवाने गई, नाम भी उसका इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स था, पहुंची और दिया उनको, तो उन्होंने मुझे देख के ये कहा, यह बहुत पुरानी बात बता रही हूं, 1980 की, प्रकाशमणि कहां है? सामने से एकदम डायरेक्ट। तो मुझे बहुत अजीब लगा और अच्छा भी नहीं लगा, सच बताऊं, क्योंकि हमारे लिए तो वो बहुत श्रद्धे हैं और ये आदमी कैसे बात कर रहा है प्रकाशमणि कहां है। तो मैंने छूटते ही उनसे पूछा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? उनके बात का उत्तर नहीं दिया, प्रति प्रश्न कर लिया कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। तो वो बोले, बेटा, बुजुर्ग थे, बोले तुम्हारी जैसी उम्र की जब वो थी तो यहां आई थी और मैंने उनको 1,00,000 पर्चे निःशुल्क छपवा के दिए थे। सच पूछिए, आज भी जब ये बात सुनाती हूं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए, श्रद्धा से सर झुका लिया। उस समय ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानता नहीं था, जिस समय की बात है। आज तो विश्व प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा कुमारियां। क्या तेज था, क्या ओज था हमारी दादियों में कि अगर एक बार मुंह से कुछ निकाला तो अगले ने पूरा करना ही, कहां जाएगा वो। ये उनकी तपस्या का फल था। आज जब मुझे कहा गया कि भक्ति का फल ज्ञान, तो मेरा चिंतन चला, आपको तो मिला ही है, मिला है ना? भक्ति नहीं होती तो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि भक्ति हमारी प्राइमरी स्टेज है। कभी भी भक्ति को नकारना नहीं चाहिए। हम बीके ब्राह्मण कुलभूषण जब बीके बन जाते हैं तो थोड़ा उपेक्षा का भाव मैं देखती हूं भाई बहनों के अंदर आ जाता है। अरे वहां क्या जाना है, अरे वो तो मंदिर है, ओ हनुमान जी का है, फलाने का है, ऐसा है वैसा है, क्यों उपेक्षित भाव क्यों रखना? उन देवी देवताओं के प्रति आप भी तो देवता ही बन रहे हो ना। अरे ये भी तो कह सकते हो, अरे बड़े भाई साहब का मंदिर है। अगर माँ दुर्गा का मंदिर है तो हम ये भी तो चिंतन कर सकते हैं कि हमारी बड़ी बहन का है, वो हमारा संपन्न स्वरूप है, जो पूज्य स्वरूप जिसे दुनिया पूज रही है, आप वो बनने का प्रयास कर रहे हो। तो भक्ति के प्रति कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, बाबा कहे, बाबा को खुली छुट्टी है, सागर है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन हम बच्चे अगर बाबा के टोन में, जैसे कबीर की भाषा अपनी थी, कबीर कुछ भी कह सकते थे, लेकिन कबीर की भाषा में अगर आम जनता बोलने लगे तो आम जनता के लोग ही स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कबीर में ताकत थी। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बजाय इसके कि हम उस भाषा में बोलें, हम उसको सम्मान दें। एक बार मुरली पढ़ रही थी, मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग के लिए कुछ कहा। क्लास में बैठे हुए लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जो क्लास भी करते थे और गंगा जी स्नान भी करते थे। बाबा ने कहा, भक्ति छाछ, नो डाउट, भगवान के महावाक्य तो कहीं से रॉन्ग हो ही नहीं सकते, निश्चित निसंदेह भक्ति छाछ है। मैंने पूछा सुनाने के बाद, आपने अर्थ समझा? तो भाई बहन चुप हो गए, क्या बताते बेचारे। छाछ आयुर्वेद में अमृत को कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं पाचन शक्ति काम करती और कुछ भी नहीं पचता, तो डॉक्टर भी कहता है पहले छाछ पी लीजिए। क्योंकि वो हजम कर देगी। सीधा बोल दे ताकत नहीं, बादाम खा लीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा। आप खाना भी चाहे तो बादाम नुकसान करेगा। हाँ, छाछ पीने के बाद जब वो पेट योग्य हो जाए तो भले ही कोई टॉनिक या बादाम खिला दीजिए, चलेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और चिंतन करके भी। तो भक्ति छाछ है, नो डाउट अमृत है। तीसरी बात अगर कहूं तो हमने सर झुकाना वहीं से सीखा। हमारे अंदर आध्यात्म का जो बीजारोपण हुआ, जो हमारे अंदर भावनाएं जन्म ली, वो वहीं से जन्म ली। याद कीजिए सब अपने अपने बचपन को। अगर माँ ने कभी आपसे कहा न होता कि बेटा हाथ जोड़ो भगवान जी, घर में रखे हुए वो छोटे छोटे, याद कीजिए घरों में होंगे कहीं ना कहीं, वो लड्डू गोपाल होंगे, कहीं ना कहीं कोई मूर्ति होगी और सुबह शाम की आरती भी होगी। सनातन धर्म को मानने वाले हर घर में कुछ न कुछ तो होता ही है, और वहीं से आस्था प्रारंभ होती है। तो पहले भक्ति, और भक्ति का फल बाबा कहता है ज्ञान है, जो ज्ञान आपको मिला। और ज्ञान शब्द को अगर हम थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो ज्ञान का तात्पर्य होता है समझ, और ये समझ आप सब में विकसित हुई, आपसे पहले हमारी दादियों में विकसित हुई। ज्ञान मिला, समझ मिली, स्वयं को जाना और बाबा की बताई हुई श्रीमत को जाना और समझा। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है योग और वैराग। चार विषय हैं, समय बहुत थोड़ा है इन चार विषय को क्लियर करने के लिए। तो जब ये ज्ञान मिला तो हमसे पहले हमारी दादियों को मिला, ये मानेंगे? हमसे पहले हमारे पूर्वजों को मिला, उन्होंने उसे किस तरह लिया? आज हम बड़े सहज भाव से कहते हैं, अभी दीदी बैठी थी, यही पूछने लग जाए, सबका योग लगता है, अच्छी तरह योग करते हो? कहेंगे हाँ दीदी बैठते तो हैं लेकिन लगता नहीं है। कहते हैं ना, हम बैठते हैं, अमृत वेले बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सुबह हम आए थे मगर इतने लोग नहीं थे जितने अभी बैठे हुए हैं। तो अमृत वेले हम करते हैं, लगता नहीं है। अच्छा क्यों नहीं लगता? कारण, हम सुबह ही योग करना चाहते हैं, दिन भर हमारा वो इंजन स्टार्ट नहीं होता, या फिर सारे कार्यों को निपटा के शाम को थके हारे आए हैं, बोला थोड़ा चैनल बदल लें, बोला 6:30 से 7:30 हो रहा है, बोला आ रहे हैं, भाई तुम बैठो मैं भी आता हूं, कर लूंगा मैं योग। तो हम जब दिन भर अपने उस इंजन को स्टार्ट नहीं करते और एक बार सुबह सुबह करना चाहते हैं, तो 24 घंटे की गाड़ी जो ठंडी हो गई है उसको आप जब स्टार्ट करोगे तो एक बार में हो जाएगी? नहीं होगी ना। पहले आप जिन्होंने पुराने जमाने की गाड़ियां देखी हैं उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि वो हैंडल लगाते थे पहले, फिर स्टार्ट होती थी। तो वो जो चीज थी, माना फिर सुबह जो हम स्टार्ट करना चाहते वो नहीं होती। ऐसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि हम रात को बैठ के चार्ट लिख लेंगे ना, अरे सारा दिन गुजर गया, तमाम सारी त्रुटियां हमसे हो गई, मनसा के संकल्पों में न जाने कितना व्यतिरेक हो गया। रात को बैठ के जब चार्ट लिखते हो तो जो गुजर चुका है दिन भर में 12 घंटे में, जो खामियां आ गई हमारे आचरण में, क्या वो पूरी हो सकती हैं? केवल लाल निशान लग सकता है, केवल अपने चार्ट में क्रॉस कर सकते हैं जब उसमें ये लाइन आएगी कि आज किसी को दुख तो नहीं दिया। तो क्या होगा? दिया, अगर सच्चाई से लिख रहे हैं तो क्रॉस लगाया, हाँ भाई आज दुख दिया था, आज ऐसा हुआ, या टिक लगाया कि हुआ, तो उस रात्रि के समय सुधारने का कोई वक्त नहीं होता, होता है? रात्रि में सुधारने का कोई वक्त नहीं होता, इसीलिए कुछ सोच समझ के बाबा ने ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बनवाया है ना, कि दिन में भी दो चार बार हैंडल लगाओ, हर दो घंटे बाद बाबा को याद करो, हर दो घंटे बाद। फिर ये देखा दो घंटे में भी काम नहीं चल रहा है, तो हर घंटे में बाबा ने कह दिया। और आप देखते होंगे कि मधुबन की इस भूमि में जब आप आते हैं तो एक छोटी सी चिड़िया बोलती है, गीत की दो लाइन शांति की, और वो हमें हमारा ध्यान खींचते, अच्छा हमें तीन मिनट योग करना है। तो ये जो एक एक घंटे बाद का क्रम बनाया, किस लिए? कि हम अपने संकल्पों की दिशा और दशा को ठीक, लाइन और लेंथ सही रखें, सही दिशा में ले चलें, और अगर कहीं इधर उधर बिगड़ गए हैं फिर से उन्हें स्नेहपूर्वक कायदे में ले आएं। तो ज्ञान का मतलब आत्मा और परमात्मा ही नहीं है, ज्ञान का मतलब सृष्टि चक्र और सीढ़ी नहीं, ज्ञान का मतलब झाड़ और योग, माना जो हम समझा लेते हैं। आज जैसे बाबा ने कहा ना, प्रदर्शनी में सेवा में जरूरत पड़ती है बहुत भाई बहन, तो केवल ज्ञान वो नहीं है जो 7 दिन का कोर्स कराते हैं, केवल ज्ञान वो नहीं है जो आप किसी को समझाते हैं, असली ज्ञान तो वो है जो खुद को समझाते हो। विचार करना, असली ज्ञान वो है जो हम खुद को समझाते हैं। और इसीलिए मैंने पूर्वजों की बात की, आदरणीय दादी जानकी जी की चर्चा करूं या आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की बात करूं, जिनका तारतम्य कभी टूटता नहीं था। हम मीरा के पद गाते हैं कि वो दिन और रात कहती थी सूली ऊपर सेज पिया की, ऊपर ही ऊपर, लेकिन वो कहती थी आगे किस विधि मिलना होए। भगवान ने हम बच्चों को हर मोड़ पे हर विधि समझाई कि तुम ऐसे मिलो। दादी जी से किसी ने एक बार पूछा कि आप योग कब करती हैं? सुबह से यहां बैठती हैं, 10 लोग मिलने वाले, आने वाले, काम पूछने वाले आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप कब योग करती हैं? तो दादी ने बहुत अच्छा शानदार उत्तर दिया। दादी ने कहा, मैं यहां जब आकर बैठती हूं, दादी क्वार्टर्स की बात कर रही हूं, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, इस संकल्प के साथ आकर बैठती हूं। बोला, जब आप मेरे सामने आते हो 2 मिनट योग करने के लिए, दृष्टि लेने के लिए, ऊपर से कनेक्शन करके फिर दृष्टि देती हूं, दृष्टि देने का मतलब केवल नजरें उठा के देखना नहीं है। बोला, कोई कार्य के लिए आता है तो भी बाबा से पूछ के ही श्रीमत देती हूं, तो मैं तो यहां रहती ही बहुत कम हूं, मैं अधिक से अधिक ऊपर रहती हूं, और ऊपर मुझे रहने के लिए प्रेरणा देने वाले आप सब, क्योंकि घड़ी घड़ी जब भी कहीं मिलते हो, दादी दादी ओम शांति, और खड़े हो जाते हो कि दादी दृष्टि दे। तो ये बहुत बड़ी बात, माना हमारे लिए तो 2 घंटे और 1 घंटे की बात है, लेकिन हमें अहिरनेस योग लगा रहे, हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, दादियों के जीवन में प्रैक्टिकल में देखने को मिलता था। हमारी परम आदरणीय जानकी दादी, कोई भी जाए कैसा भी जाए, वो यूं करके जैसे नहीं बच्चे का मुंह घुमा देते हैं, मेरा बाबा देखो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत सानिध्य मिला है। कभी कभी अपने आप पे बड़ा नाज होता है, हर समय हर घड़ी जब चाहूं तब पहुंच जाऊं, दादियों के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। तो जब भी दादी के पास जाओ तो दादी बाबा की ओर मोड़ देती थी, चलिए बाबा भी बुला रहे, दादी जी की बात इसलिए कर रही थी कि उन्होंने ज्ञान को कितनी गहराई से समझा और प्रतिपल इंप्लीमेंट किया उसको लाइफ में। तो दादी जी हमेशा लास्ट में तो वो यही कहते थे, मैं कौन और मेरा कौन। अहिर्निश योगी या प्रज्ञा शक्ति का साक्षात स्वरूप अगर देखना तो वो दादी जानकी में दिखाई देता था कि बाबा उनसे एक पल भी भिन्न नहीं होता था। तो वो स्वरूप जिसको इतना कुछ होते हुए भी अटैचमेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कहा करती थी, आप लोगों ने दादी के ही मुख से सुना होगा, सफेद कपड़ा खीसा खाली। तो वो कहती ही नहीं थी, उस महावाक्य को जीती भी थी। तो दादी ने उस ज्ञान को, वो चाहे ये दादी हो चाहे वो दादी हो, दादियों ने समझा गहराई से और समझने के बाद उसको जिया, जीवन में लाया, इम्प्लीमेंट व्यवहारिक उसमें किया धरातल पर। अब उसके बाद हम आते हैं योग पर या वैराग्य पर। तो हम बच्चों को भी बाबा से योग लगाना और निरंतर लगाना, आज 12 तारीख है, आदरणीय जगदीश भाई जी भी याद आते हैं कि वो कहते थे योग की गहराई माने कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंटली योग होना चाहिए और योग की चौड़ाई सर्व संबंधों में होना चाहिए। हम कहीं तो कमजोर पड़ते हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं, थोड़ी देर योग हुआ बोला अरे आज बड़ा अच्छा योग हुआ, किसी दिन बैठे बोले योग लगाया तो लेकिन लगा नहीं, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो अगर हम पानी चाह रहे हैं पृथ्वी से और बोरिंग कर रहे हैं और वो बोरिंग 5 फीट 10 फीट करके छोड़ दे रहे हैं, क्या पानी मिलेगा? ऐसे ही अगर हम कॉन्टिन्यूस में नहीं, निरंतरता में अंतर पड़ जाता है तो क्या योग की गहराई हमें आ पाएगी, वो जल मिल पाएगा जो उस योग की अनुभूति का है, वो जल मिल पाएगा जिसे कहा जाता है अतींद्रिय सुख। तो योग की गहराई के लिए ये बनाए गए कई स्टॉप, कई स्टॉपेज, यहां रुक जाओ वहां रुक जाओ, हर आधा घंटे बात कर लो, हर 2 घंटे बात कर लो, सरल से सरल करके ये राजयोग हमें हमारे बड़ों ने दिया। फिर सर्व संबंधों में अगर वाकई योगी बनना है तो ये खड़े खड़े का योग या बैठे बैठे का योग नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, मैं कबीर को भी बीच में ले लेती हूं कई बार, इसलिए कि एक धर्म सम्मेलन में गए थे उनसे लोगों ने पूछा कि जितने लोग आए हैं संत महात्मा सब कुछ न कुछ करते हैं, एक आप ऐसे हो जो कुछ नहीं करते हो। तो कबीर हंसे और कबीर ने कहा, ठाड़े बैठे परे उताने कहें कबीर हम उहे ठिकाने। उनकी भाषा अपनी थी, उन्होंने कहा कि मैं खड़ा रहूं या बैठा रहूं या लेटा रहूं, मैं वहीं रहता हूं, मैं किसे याद करूं, मैं क्या करूं, मैं किसके लिए करूं। तो बाबा ने जो हम बच्चों को योग की गहनता, योग की विस्तृत जानकारी दी, उसमें सर्व संबंधों से योग, और सर्व संबंधों से योग, हे अर्जुन, देह सहित देह के संबंधों को छोड़कर मुझे एक को याद करो। गीता में कुछ और नहीं, मगर याद करें कैसे? मन अभी भी राग में कहीं न कहीं फंसा हुआ, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में। अगर ये छोड़ दो तीनों बातें, तो रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, स्वाद में। आज अमृत मेले में आ रही थी, यहां से करके जा रही थी, कहना नहीं चाहिए, कोई महानुभाव इतना स्ट्रांग स्प्रे डाले हुए थे। अरे सुबह सुबह किसको सुगंध देनी थी? मना आज भी हमारी मनोवृत्ति कहां कहां जा रही है। तो ये जो मनोवृत्ति आज भी भटक रही है, तो केवल कहते ही हैं, तुम्हें वो मातश्च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, वो भी आप कहते हैं, अरे भक्ति वाले कहते हैं, लेकिन भक्ति वाले फिर भी अच्छे हैं। लास्ट लाइन कहते हैं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा, सारे संबंध मेरे तुम्हारे साथ। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि भक्ति वालों की उपेक्षा नहीं करना, भले ज्ञान मिल गया, क्योंकि प्रैक्टिकल देखा है मैंने, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, भक्ति वाले फिर भी वो दो जोड़ कपड़ा दबाए चले जा रहे हैं, पुलिस वाले डंडा खटका रहे हैं, कहां जा रहे हो? गंगा जी जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई गम नहीं है, वो फिर भी मस्त है। और हम सुबह अमृत वाले योग में नहीं आ सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, बत्ती में नहीं आ सकते। तो हम ज्यादा समझदार हैं। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब तज एक भज नहीं हुए अभी तक, अभी तक बुद्धि चली जाती हमारे अपने स्वभाव में, हमारे अपने संस्कार में। कोई न कोई चीज अभी भी, अगर अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट बनाएं, बहुत सी निकल आएंगी, बहुत सी निकल आएंगी। हम कहते हैं हम योगी, हम बैरागी, कहां बैरागी? अपने अपने वार्डरोब खोल के देखिए, उस वार्डरोब में नए नए दो तीन जोड़ अभी सिलवाए होंगे मधुबन आने के लिए, उन्हें निकाला भी होगा, लेकिन हाथ किसी पुराने सेट पे भी गया होगा जो बहुत फिट है और बहुत अच्छा लगता है, ये भी लिए चले, ये बहुत फिट है। होता है ऐसा कि तमाम सिलवाने के बाद भी पुराने कपड़ों से मोह नहीं जाता। अपने घरों में नजर डालें, माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, घर में पुरानी सिलाई की मशीन पड़ी होगी, शायद दिवाली पे उसकी धूल झड़ती होगी। अगर बच्चे कहते निकाल दो ना मम्मी, इसको क्यों रखे हो? बोला वाह, मेरी मम्मी ने दी थी मेरी शादी में, ऐसे ही निकाल दो। कहीं लगाव है। एक स्कूटर है जो चलता नहीं है, आप बढ़िया होंडा सिटी से चल रहे हो, लेकिन कहते हो पहली तनख्वाह मिली थी ना तब खरीदा था, कोई नहीं चल रहा उस पे, मगर रखा है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभी भी किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी स्वाद से, किसी न किसी गंध से, किसी न किसी स्पर्श से लगाव है, और ये लगाव वैराग नहीं आने देता। विरति जागे जिंदगी में राग की इति, राग की इति हो जाए, लेकिन हो कैसे जाए? जब जागे तब ना। राजा भर्तहरि को जब सन्यास का भाव आया और चल दिए थे तो वो भी गंगा स्नान पे जा रहे थे और उन्हें रास्ते में एक जगह कुछ ऐसा लगा जैसे बहुत तेज चमक रहा है, कोई असरफी है। आप सबको, पुरानों को तो सबको पता होगा कि पान जो लोग खाते थे उसमें वर्क लगा करते थे चांदी और सोने के, अब तो ऐसे ही लगते हैं, पहले प्योरली लगते थे। और वो चांदी के वर्क के कारण से असरफी की तरह चमक रही थी। राजा भर्तहरि ने जिज्ञासावश उसे हाथ लगाया, हाथ गंदा हो गया, असरफी तो थी नहीं, वो कोई पान खा के थूका हुआ था। अपने में बड़ी ग्लानि हुई उनको, और जैसे उनके मन ने उनको धिक्कारा कि तुम अरे असरफियों का खजाना छोड़ के चले आए हो, तुम सन्यासी बनने आए हो, ये क्या अभी भी असरफी खोज रहे हो। बहुत कष्ट हुआ अंदर। इसीलिए भर्तहरि का वैराग्य शतक बहुत प्रसिद्ध है, 100 श्लोक लिखे थे उन्होंने कि वैराग्य कैसे कैसे हम वैराग्य जीवन में लाएं। बाबा तो यहां बेहद का वैराग्य सिखाता है कि हम रहते हुए भी घर में, परिवार में, समाज में सब कुछ करें और उसके बाद भी अटैच न हो, डिटैच रहें। भक्ति का फल मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ढीले हो गए, योग सीखा हमने, योग को भी हमने परिधि में बांधने की कोशिश की। और जब वैराग की चर्चा आती है तो सब पूछिए वैराग भी पूरी तरह अभी हमारे अंदर आया नहीं। मुझे भ्राता जी इसीलिए याद आते हैं, वो जो बात कहते थे बड़ी मार्मिक कहते थे। उन्होंने कहा अगर इंसान की तरह न कर सको तो कम से कम अरे बंदर की तरह कर लो, बिल्ली की तरह कर लो। बोला बंदर और बिल्ली भी कहीं वैराग करते हैं? बोला हाँ करते हैं। बोला बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, सब जानते हैं, और इतने पेने दांत हैं उसके, इतने पेने नाखून हैं, बच्चों को उठा के मुंह में दबा के ले जाती है। कभी सोचा आपने किसी बच्चे को खरोच आई हो? इतने समर्पित हो जाओ भगवान पे, इतने समर्पित हो जाओ, उसे नैया खुद पार लगाने दो ना। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान ने कहा मुझे की शरण में आ जाओ। अर्जुन समर्पित हुआ, कहते हैं जहां धर्म है वहां विजय। गीता में कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती, का सोच लो अक्षौहिणी नहीं होगी तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भी अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप तो रहोगे। जब बाबा कहता है कि तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा सब कुछ देखूंगा, अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दो, भला क्यों नहीं सौंप पाते हम? क्या वजह है क्यों नहीं सौंप पाते? किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए? ये वैभव साथ जाएंगे, वो लोग हमारे साथ जाएंगे, वो नोटों की गड्डियां जो वहां रखी हैं वो साथ जाएंगी। हम सब जानते हैं कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर भी बाबा को पूरी तरह अर्पित नहीं हो पाते। अगर अर्पित हो जाए तो जिम्मेवारी बाबा की। और दूसरी तरह का वैराग कहते हैं बंदर का जो राग है, वैसे तो उसका राग प्रसिद्ध है, बच्चे को पीठ पे चिपका के घूमता है। वो ठीक है कि बच्चे को पार करेगा वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, लेकिन वहां बच्चे की जिम्मेवारी ज्यादा है, वो पकड़ के रखता है। अगर बच्चा छोड़ दे तो नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है ये सोचो जरा वैराग में। अपने आप को बाबा के हवाले कर देना है और अपने मन के अंदर ये पक्का कर लेना है, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। बाबा जैसे चाहे, उसने कहा है तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों दूंगा। जहां ये कहा गया है कि हे अर्जुन सर्वधर्मानि परतज्यं मामेकं शरणं व्रज, वहां आगे की लाइन है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा मेरे बन जाओ, मुझे तुम्हारी किसी चीज की दरकार नहीं। बाबा ने कहा मैं भिखारी थोड़ी हूं, जो तुम भगवत अर्पण करते हो मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम मेरे बन जाओ। तो विचार करने वाली बात है कि हम अपनी पतवार उसके हाथों में सौंप दे रहे हैं या नहीं। अच्छा हम भगवान को पकड़ने चलो यही सही, भगवान पार कर देगा हर आंधी और तूफान में, हमारी पकड़ मगर ढीली हो जाती है बहुत बार ढीली हो जाती है। हम भगवान को छोड़ के किसी और को भी पकड़ लेते हैं। बाबा को अपने महावाक्यों में बहुत तरीके से समझाना पड़ता है, कभी राम और सीता और रावण का उदाहरण देता है, कभी बाबा लक्ष्मण रेखा का उदाहरण देता है। टॉपिक बहुत गहन है, बहुत विशाल है, अगर चार घंटे भी चले तो कम है, समय कम है, तो आपकी समझ पर छोड़ दे रहे हूं कि ये जो बेहद का वैराग्य है कि रहें घर में, सब कुछ देखें, सब कुछ सुने, सब कुछ समझें, लेकिन खुद डिटैच रहें। अभी आप लोगों ने कुछ ही साल पहले कोरोना पीरियड में पैसे की उपयोगिता समझ ली होगी, गड्डियां रखी रहीं और हम अपने अजीजों को बचा नहीं पाए, एक सिलेंडर मुहैया नहीं करा पाए, संबंध आपके रखे रहे होंगे, जब आपका अपना कोई बीमार पड़ा होगा चार जगह फोन खटकाए होंगे लेकिन सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, भाई क्या करें हॉस्पिटल में जगह नहीं, एक बेड नहीं मिल सकता, देखा है ना। तो जीवन का कटु यथार्थ भोगा है आपने अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद जैसे ही वो बयार खत्म हुई, हवा खत्म हुई, वो गई, हम फिर मौज मस्ती में, हमारा वो जो वैराग्य का क्षण था वो शमशानी वैराग्य बनकर रह गया। बेहद का वैराग्य अपने अंदर लाने के लिए हम ये न करें कि भगवान की नाव में बैठ गए, ठीक है चप्पू चला रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे बनारस, मगर सुबह जब आंख खुली तो वो इलाहाबाद में ही बनी हुई थी। बोला ये क्या हुआ, बोला लंगर तो खोला ही नहीं था। तो हम भी कहते हैं यहां दीदियों ने समझा रखा है, मैं आत्मा हूं, हम देख रहे हैं बहुत से लोग परमधाम चले गए, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो ये मंत्र की तरह, चप्पू चलाने की तरह, चप्पू चला रहे हैं, जो हमें पढ़ाया गया वो हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी यहां नहीं उतरा ये सब, अभी लंगर बंधा हुआ है पीछे, वस्तु से, व्यक्ति से, वैभव से, स्वाद से, गंध से, स्पर्श से, रूप से, रंग से। ये जितनी खूबसूरत आत्मा है और जितना खूबसूरत वो हमारा परमात्मा है, उतना खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। जिन चित्रों को देखकर बुद्धि अट्रैक्ट होती है, आप सोचो बनाए तो उसी चित्रकार के हैं, चाहे वो मानव का शरीर ही क्यों ना हो, उस चित्रकार की रचना है, वो सब कहां खो जाते हो। तो अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता का भाव रखो और समय को अपनी बाजुओं में कस के पकड़ के रखो। ये संगम युग है, ये कभी मत भूलना, और संगम युग वो युग है जो असंभव को संभव करता है। अभी दो दिन पहले बाबा ने मुरलियों में कहा था, कर लो जमा जितना करना है, ये बैंक कभी खुली है, आगे ये बैंक ही नहीं रहेगी तो जमा क्या करोगे, तो भले धन तिजोरियों में रखो लेकिन मन तो जमा कर दो, वाणी तो जमा कर दो, कर्म तो जमा कर लो, अरे कुछ तो जमा कर लो। संगम युग में हर असंभव संभव। मैं जो बात कह रही थी कि बाबा ने कहा है इस संगम युग में मेरे बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, इतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं दे सकता, इतनी बड़ी गारंटी भी कोई नहीं ले सकता जो भगवान ने हम बच्चों के लिए। जरा कस के पकड़ो ना उंगली बाबा की, इस संगम युग में हमारा अकल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हम संगम युग में बैठे तो इस भट्टी में जब हम आए हैं, एक एक पल संगम युग का बरसों के बराबर है। ये बाबा के महावाक्य हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रही। आपका किया हुआ पुरुषार्थ, 63 जन्मों का कार्मिक अकाउंट, जिसके कारण कभी गम और कभी खुशी हम झेलते हैं और देखते हैं, जिसके कारण कभी मायूस हो जाते हैं, जिसके कारण कभी धूप झेलते हैं, कैसे होगा 63 जन्मों का, सर झुका लेते हैं, क्या करें, भोगना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों भोगना पड़ेगा, भोगना भोगियों का काम है, आप योगी हो, आपको क्यों भोगना पड़ेगा, आप उसे योग की अग्नि में भस्म कर सकते हो, अपने हौसले बुलंद रखो। 63 जन्म नहीं लेने पड़ेंगे उसको भोगने के लिए, 63 मिनट काफी हैं, 63 दिन काफी हैं, 63 घंटे काफी हैं। आप यहां आए हो, अगर एक एक पल को सफल कर लो तो 63 जन्मों का अकाउंट यहीं बदल जाएगा, यहीं बदल जाएगा। कलकत्ते और पटना में जाने की जरूरत नहीं, वहां नहीं, यहीं बदल जाएगा। लेकिन जब हर पल को मूल्य दोगे तब, बेहद के वैराग्य को, जल में रहते हुए न्यारे और प्यारे बनने की बात हमें हमारे बाबा ने समझाई और उसको हम जीवन में लेके चले तो हम सफल हो सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूं, आगे भी कार्यक्रम है। ओम शांति।
आप मिले बिट गई मन की सभी चाह, आप मिले बिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बा 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 वाह बा 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 वाह बा 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 वाह बा 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 बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुम चुम के मोती बनाई आई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह 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 वाह।